नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छता से ही देश स्वस्थ और विकसित होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित किया। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए विचार तेज। चीन के चांगझो में भारत की मालविका बंसौर चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत तथा बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेन्नई में जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन चुका है। राष्ट्रपति ने आज उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश के कई शहर सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि स्वच्छता से ही देश स्वस्थ और विकसित होगा। उन्होंने कहा है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में संस्कृति और सभ्यता की परंपरा सदियों से निरंतर विद्यमान है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 2025 तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में हमें पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना होता है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने 5 सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने इस अवसर पर उज्जैन और इंदौर के बीच 6 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण के लिए वर्चुअल माध्यम से भी भूमि पूजन की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने देश की दूसरा स्थान हासिल किया है। इंदौर 7 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रह चुका है। भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि उज्जैन इंदौर राजमार्ग 6 लेन का बन जाने से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक विकास भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 प्रदर्शनी के अवसर पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में एक जीवंत और विविध खाद्य संस्कृति है। किसान देश के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है। सरकार किसानों की मदद करने के लिए नई नीतियां लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देश के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे और श्रृंखलाओं का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में कई देशों की भागीदारी पर कहा है कि ये दुनिया के साथ काम करने का एक आदर्श मंच है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस मंच पर खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रसंस्करण उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांडिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य तथा प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। आकाशवाणी संवाददाता ने प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे कुछ प्रतिभागियों से बात की। उन्होंने बताया है कि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष अपने उत्पाद प्रदर्शनी करने का यह एक बहुत अच्छा मौका मिला है। केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान और तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियां बताते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा है कि किसानों से सीधे जुड़कर वैज्ञानिक उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के एक राज्य का दर्जा बहाल करने के जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने संसद में यह बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये वायदे को उनकी सरकार ने पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेकर एक इतिहास रचा है। कल पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंक के डर के बिना मतदान हुआ। हरियाणा में एक ही चरण में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रही है। कुछ 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। श्री तमांग ने आज कहा है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने से बहुत फायदा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर विशेष अभियान चला रहा है। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कार्यालय परिसर की स्वच्छता, मामलों को निपटाने, बेहतर स्थानीय प्रबंधन और संचार के विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि मीडिया इकाई प्रमुखों के साथ विशेष अभियान 4 की प्रगति की समीक्षा बैठक की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा है कि सरकार का लक्ष्य हाइड्रोजन के उपयोग से आने वाले वर्षों में लगभग 22 लाख करोड़ के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने और लगभग 4 लाख करोड़ बनाना है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा है कि सरकार मीराई की परियोजना पर तेजी से कार्य कर रहा है। मीराई एक कार है जो कचरे से उत्पन्न हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से सस्ती दर पर हाइड्रोजन का उत्पादन संभव हो सकता है। मंत्रालय ने भारत को ऊर्जा निर्यात देश बनाने के लिए $1 प्रति किलोग्राम की दर से हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कृषि के महत्व पर जोर दिया और कहा कि हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता, ईंधनदाता और हाइड्रोजन दाता भी हैं, क्योंकि वे पराली के उपयोग से जैव इथेनॉल उत्पन्न करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजी संस्थाओं से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि मेट्रो शहरों पर बहुत अधिक जोर देने से देश में आर्थिक असमानता पैदा हो रही है। नेपाल आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर काठमांडू घाटी के टुंडीखेल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें नेपाल के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पडेल ने कहा है कि नेपाल के संविधान ने शासन के केंद्रीकृत और एक आत्मक स्वरूप द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न को समाप्त करके जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से विविध नेपाल समाज को व्यापक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि संविधान द्वारा सुनिश्चित स्वतंत्रता का उपयोग करके नेपाल का भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल रात समाप्त हो गया। उम्मीदवारों ने कल शाम कोलंबो में एक जनसभा की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ी कटौती की खबर से उत्साहित भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी दिखाई दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 687 अंक बढ़कर 83,635 अंक की नई ऊंचाई पर और निफ्टी भी 197 अंक बढ़कर 25,575 पर पहुंच गया है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में भारत की मालविका बंसोड़ ने महिला सिंगल्स में विश्व की 25वें नंबर की खिलाड़ी स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमर को हरा दिया है। उन्होंने गिलमर को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 311 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।